मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैंने ठीक इससे पहले के एपिसोड में आपसे वैदिक कालीन जो हमारी विचारधारा रही, जो हमारी विचार पद्धतियां रही, उसके बारे में थोड़ी सी बातें की थी। और आपको याद होगा कि उसे दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल काफी प्रोग्रेसिव पीरियड रहा है, बहुत ही प्रगतिवादी काल रहा है। लेकिन जैसा कि सामान्यतया होता है कि कोई भी चीज बनती है और बनने के बाद जब वो अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है तो फिर डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है, यानी कि उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। जो उत्तर वैदिक कालीन जो हमारी विचारधारा है, जो सामाजिक संरचना है, वह इसको प्रमाणित भी करती है कि किस तरीके से वह धर्म जो पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित था, धीरे 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 पर्सोनिफिकेशन होने के कारण कर्म कांडों पर आधारित होने लगा। यहां तक की जानकारी आपके पास है। अब हम एक सेकेंड फेज में एंटर करने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र के इतिहास के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चरण में। लेकिन महत्वपूर्ण चरण की बात शुरू करने से पहले मैं एक दो तथ्य और आपके सामने रखना चाहूंगा, और खासकर इस सोच के साथ कि शायद ये बातें जानने के बाद दर्शन शास्त्र के बारे में और विशेषकर भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में जो आपकी पकड़ है वो अधिक गहरी और व्यापक हो सकेगी। वह केवल फैक्ट पर आधारित न हो करके यूं कह लीजिए कि मूल सिद्धांतों पर आधारित हो सकेगी। देखिए, जब हम दार्शनिक पद्धतियों की बात करते हैं तो जो पूरे दुनिया का जो दर्शन शास्त्र है उसे सामान्यतः दो मोटे मोटे भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आध्यात्मिक दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है भौतिकवादी दार्शनिक प्रणाली। शब्द में ही देखिए अर्थ छिपे हुए हैं। जो आध्यात्मिक दार्शनिक प्रणाली है वो किसकी बात करेगी? वो ईश्वर की बात करेगी, वो आत्मा की बात करेगी। और जब वो इस तरह की बातें करने लगेगी तो उसमें रहस्य आता चला जाएगा, तो इसे आप रहस्यवादी प्रणाली भी कह सकते हैं। रहस्य क्यों आएगा? जैसे मान लीजिए आप आत्मा की बात कर रहे हैं, आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, आप परलोक की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, आप कर्म फल की बात कर रहे हैं, तो अब इनके क्या प्रमाण है? आप बताइए कि जो बात करने वाला व्यक्ति है, जो दार्शनिक है, वो इनके बारे में क्या प्रमाण दे सकता है? या तो आप इन पर यकीन कर लीजिए या आप इन्हें ठुकरा दीजिए, बात खत्म हो गई। तो इसीलिए इसे कहा जाता है आध्यात्मवादी प्रणाली। आप आध्यात्म की बात करते हैं, और सच पूछे तो हमारे जो ऋग्वेद कालीन जो विचारधारा रही है, जो विचार पद्धति रही है, अगर हम ऋग्वेद को छोड़ दें तो धीरे धीरे हम इसी में उलझते चले गए हैं। हमारी जो प्रणाली है वो आध्यात्मवादी होती चली गई है। जब मैं कहता हूं कि दूसरी जो प्रणाली है वो भौतिकवादी प्रणाली होती है, तो भौतिकता क्या है? भौतिकता का अर्थ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो संसार दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं भौतिक जगत। यह है, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप छू सकते हैं, इसे आप महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में आप प्रयोग कर सकते हैं, इसे प्रमाणित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भौतिक जगत। तो जब आप भौतिक जगत की बात करेंगे तो देखिए सीधी सी बात है कि अब आप आध्यात्म से निकल करके, या कह लीजिए आत्मा से निकल के, या आप कह लीजिए हृदय से निकल करके, आप बिल्कुल दिखाई देने वाले दृश्य जगत में पहुंच जाते हैं। इसे आप एक उदाहरण के जरिए शायद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जैसे यदि मैं ये कहता हूं कि संसार को रचने वाला एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मा है, एक शक्ति है, विश्व शक्ति है, उसने इस संसार की रचना की है। लेकिन ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, यह मिथ्या है, यह माया है, यह झूठा है, यह भ्रम है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये आध्यात्मिक प्रणाली हो गई। लेकिन जब मैं यह बात कहता हूं कि नहीं, ये जो संसार है, इस संसार की रचना इसके अपने सिद्धांत के अनुसार हुई है, इसमें एक चेतना है, इसके जो कण हैं वे जब आपस में मिलते हैं तो वो एक नए तत्व को जन्म देते हैं, और फिर वह जब नया तत्व दूसरे तत्वों से मिलता है तो फिर एक नई वस्तु का निर्माण होता है, और इस तरह से क्रमशः इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य है, यही सब कुछ है, यहां हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, हमारी जो चेतना है उसका निर्माण भी इस भौतिक जगत से होता है। हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल हमारी चेतना बनती है, और वस्तुतः यह चेतना ही आत्मा है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा अमर जो कहा जाता है, ये एक झूठी बात है। जब मैं इस तरह की बातें कहता हूं तो ये भौतिकवादी पद्धतियां हैं। इसे आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं उसके आधार हैं। या यूं कह लीजिए कि ये तर्कवादी दर्शन है, बुद्धिवादी दर्शन है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से मोटे तौर पर जो दार्शनिक प्रणालियां हैं, ये विश्व की बात मैं कर रहा हूं, भारत की बात नहीं है, इन दो भागों में विभाजित की गई है, आध्यात्मवादी और भौतिकवादी। कुछ लोग आध्यात्मवादी को रहस्यवादी भी कह देते हैं और भौतिकवादी, और भौतिकवादी को आप क्या क्या नाम दे सकते हैं मैं बता चुका हूं। देखिए, नाम आपको ध्यान में रखने जरूरी है, नहीं तो आपको पता लगा कि भौतिकवादी शब्द का अर्थ तो मालूम है लेकिन कहीं तर्कवादी आ गया, कहीं बुद्धिवादी आ गया, कहीं वैज्ञानिक पद्धति आ गई, तो आप कहेंगे यार इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जबकि आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते भी हैं, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने यहां विशेष रूप से किया है। लेकिन जब हम भारतीय दार्शनिक पद्धति के बारे में बात करते हैं तो दो शब्द हमारे पास और आते हैं, बेहतर होगा कि आप उनसे भी यहां परिचित हो जाएं। एक है आस्तिवाद, या यूं कह लीजिए आस्तिक, और दूसरा है नास्तिक। आगे चल करके जब आप भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मिलेंगे। आस्तिक, आस्तिक का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से इसे समझाया जा सकता है, लेकिन मैं बहुत ही सामान्य रूप में समझने के लिए आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि आस्तिक का मतलब है अस्ति, यानी कि है, क्या है, क्या है तो ठीक है लेकिन क्या है। इसका मतलब है कि जो एक परम ब्रह्म की कल्पना की गई है कि इस संसार को रचने वाला कोई है, तो जो इस पर विश्वास करता है कि कोई है वह आस्तिक है, जो यह विश्वास करता है कि आत्मा है वह आस्तिक है, जो यह विश्वास करता है कि इस लोक से परे भी कोई लोक है वह आस्तिक है, यानी कि वह उन चीजों पर भी विश्वास कर रहा है जो नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो आस्था पर टिकी हुई विचार पद्धति आस्तिक। सामान्य रूप में हम लोग जब बोलचाल की बात करते हैं तो जो भगवान को मानते हैं तो उसको कह देते हैं आस्तिक। तो ठीक है, भगवान का मतलब ये है विश्व का नियंता, विश्व का रचयिता, बात वही है। दूसरा है नास्तिक। नास्तिक का क्या मतलब हुआ, न अस्ति, कि आप कह रहे हो है आस्ति, मैं कह रहा हूं नास्ति, नहीं है, खत्म हो गई बात। यानी कि आप जो कह रहे हो कि ईश्वर है मैं उसे नहीं मानता, आप जो कह रहे हो आत्मा है मैं नहीं मानता, आप कहते हो आत्मा अजर अमर है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती मैं इसे नहीं मानता, आप कहते हैं परलोक होता है मैं इसे नहीं मानता, आप कहते हैं पुनर्जन्म होता है मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे मानता ही नहीं हूं। तो जब आप ईश्वर को नहीं मानते हैं भैया तो क्या है, तो फिर नास्तिक, ये नास्तिक दर्शन पद्धति हो गई। अब आप देखिए कि भारतीय दर्शन विकास में क्या हुआ, हम ऋग्वेद तक, हम वैदिक काल तक की बात कर चुके हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक आते आते, अब मैं सीधे फिलॉसफी पर आ रहा हूं, आपने देखा कि कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने आपको बताया कि समाज में एक विशेष वर्ग का उदय हो गया था, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, पुजारी वर्ग, जो भी आप कह लें, और धीरे धीरे वो बहुत ही प्रभावशाली होने लगा था। यहां तक प्रभावशाली हो गया था कि राजा पर भी कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी पकड़ बन गई थी, हालांकि हमारे यहां राजा पर उसकी इतनी पकड़ नहीं बन पाई जितनी कि यूरोप में जो पोप थे, धार्मिक प्रमुख हैं, उनकी पकड़ राज्यों पर बन गई थी, राजाओं पर बन गई थी, मतलब वो तो शासन चलाते थे, पोप ही कहा जाता है कि मूलतः शासन चलाते थे, राजा कुछ नहीं कर सकते थे उनके खिलाफ। हमारे यहां वह हस्तक्षेप नहीं रहा लेकिन फिर भी समाज पर उनकी पकड़ ज्यादा थी, क्योंकि वो एक प्रकार से ईश्वर के प्रतिनिधि जैसे माने जाने लगे, या यूं कह लीजिए कि इस रूप में वो प्रतिनिधि हो गए कि हमारे बीच और ईश्वर के बीच संदेश देने का काम या संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा था, पुरोहित वर्ग कर रहा था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, समाज में होता यह है दोस्तों कि जब किसी के हाथ में सत्ता आती है, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो, चाहे वह धन की सत्ता हो, चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो, तो धीरे 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 सामान्यतः यह देखा ही गया है अब तक के इतिहास के पूरे दौर में कि वो करप्ट होता चला जाता है, उसका जो आचरण है वो भ्रष्ट होता चला जाता है, और उसकी कोशिश होने लगती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सत्ता का विस्तार करूं, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो, चाहे वो धन की सत्ता हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो। इसीलिए राजा लड़ाई करते रहते हैं, धर्म फैलाने के लिए आप देखिए कि कैसे युद्ध होते रहते हैं, धन के लिए नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, नए नए तरीके किए जा रहे हैं, व्यापार को फैलाया जा रहा है, ज्वाइंट कंपनियां बनाई जा रही हैं, ये सब कुछ तो वही हो रहा है। तो ये जो धार्मिक वर्ग था इसकी पकड़ जबरदस्त रूप से होने लगी और ये देखा जाने लगा, चलिए पकड़ होने लगी तो बात ठीक है, कि इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा उस समय के सामाजिक जीवन पर, जबरदस्त रूप से दुष्प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि जो जनता की जो सोच है, जनता के जो विचार हैं, उनको अब किसने जकड़ लिया? उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने जकड़ लिया। परम ब्रह्म परमेश्वर ने जकड़ लिया कहने का मतलब है कि वो तो पूरी तरह से अब भाग्यवादी होता जा रहा है, हर चीज के लिए वो धर्म पर निर्भर होता चला जा रहा है, कर्म से हटता चला जा रहा है। आप इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा राज्य जिसके नागरिक कर्म से विमुख हो रहे हों, कर्म कांड में लगे हुए, कर्म को छोड़कर के कर्म कांड में लगे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, काम कर नहीं रहा है कोई, तो उस राज्य के अस्तित्व के बारे में आपके क्या विचार हैं? कितने दिन तक टिक सकेगा वह राज्य? लगभग लगभग यह स्थिति आने लगी थी, लोगों की जो चेतना थी वह सुप्त हो गई थी। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो धर्म है वह बेसिकली अफीम की तरह है, लोग इसका इस्तेमाल अफीम की तरह करते हैं। अफीम की तरह करते कौन है? लोग नहीं करते, जो इसके प्रतिनिधि हैं, जो धर्म के जो नेता हैं या धर्म के जो पुजारी हैं, वो करते क्या है कि लोगों के दिमाग में धर्म का इतना ज्यादा, आप यूं कह लीजिए, भर देते हैं उसका भय और उसकी जरूरत, कि लोगों की चेतना सुप्त होने लगती। जैसे अफीम पीने के बाद, अफीम खाने के बाद आप कुछ सोच नहीं सकते, सोने का मन करेगा, आलसपन आएगा, बस ठीक उसी तरह से हमारी चेतना फिर सोचने समझने के लायक नहीं रह जाती, भैया जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, और फिर वो क्या कहेंगे आपका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो धर्म है वो अफीम का काम करती है, और भारतीय समाज में भी ऐसा होने लगा था। तो दोस्तों, आज अपने इस विषय को यहीं मैं विराम देता हूं, अब आगे हम लोग इस पर फिर से बातें करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।